अमीहि त्वां सुरसंघा विशन्ति
अमीहि त्वां सुरसंघा विशन्ति
केचिद् भीता प्राञ्जलयो गृणन्ति
केचिद् भीता प्राञ्जलयो गृणन्ति
स्वस्तीति उक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा
स्वस्तीति उक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा
स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभि पुष्कलाभि
स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभि पुष्कलाभि
अमी मतलब ये सब अमी ही निश्चित ही ये सब त्वां सुरसंघा विशन्ति जितने भी देवता हैं वो एक साथ आप में प्रवेश कर रहे हैं। यू कैन पांडे प्रभु यू कैन टेक दिस माइक्रोफोन। केचित भीतः प्राञ्जलयो गृणन्ति प्राञ्जलि अंजलि आप जानते हैं प्राञ्जलि मतलब हाथ जोड़ करके कुछ देवता आप में प्रवेश कर रहे हैं और कुछ देवता हाथ जोड़ करके गृणन्ति आपका गुणगान कर रहे हैं किस प्रकार और कह रहे इसके बाद कह रहे हैं स्वस्तित उक्त्वा महर्षि सिद्ध संगा जो महर्षि हैं और सिद्ध हैं उनका संग उनके साथ इकट्ठे होकर के स्वस्ति वाचन कर रहे हैं स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभि स्तुतियों के द्वारा आपकी वह स्तुति कर रहे हैं पुष्कलाभि पुष्कलाभि को प्रभुपाद ने अनुवाद किया है वैदिक स्त्रोतों से आपकी स्तुति कर रहे हैं इस प्रकार से अर्जुन देख रहे हैं देवाओं का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्त्रोतों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं स्तुति स्वस्ति वाचन का अर्थ आप समझते हैं स्वस्ति मतलब स्वस्ति वाचन मतलब मंगल वाचन शब्दों में शक्ति होती है कि उस स्थान को पवित्र करते हैं तो प्रायः किसी भी कार्य को करने से पहले स्वस्ति वाचन होता था तो इसी प्रकार से यहाँ पे कल्याण हो इस प्रकार से वैदिक स्तुतियों को बोल करके वह कह रहे हैं गीता भूषण टीका ये देवताओं का समूह आपका आश्रय ले रहे हैं कुछ देवता भयभीत होने के कारण कुछ दूरी पर स्थित होकर हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि पाही पाही प्रभु अर्थात हे स्वामी हमारी रक्षा कीजिए। एक अद्भुत थोड़ा विनोद की बात थी मैं इंडोनेशिया गया था तो वहां पे प्रायः किसी भी मतलब कार्यक्रम से पहले वो बोलते ओम स्वस्ति अस्तु ओम स्वस्ति अस्तु ओम स्वस्ति हो हे भगवान स्वस्ति हो लेकिन को यह पता नहीं इसका अर्थ क्या है। मैंने पूछा उनसे कि स्वस्ति का अर्थ क्या होता है तो उनमें से किसी को पता नहीं था वहां के प्रिंसिपल को भी पता नहीं था कि स्वस्ति का अर्थ क्या होता है और स्वस्ति अगर मालूम भी हो तो स्वस्ति होती क्या है और ओम का अर्थ क्या है सब नहीं जानते हो। स्वस्ति भगवान के नाम से होती है। महर्षि और सिद्धगण महान संकट को देखकर आपका गुणगान इस प्रकार कर रहे हैं कि विश्वस्य स्वस्ति अस्तु अर्थात विश्व का कल्याण हो। तो यही बात प्रभुपाद जी अपने अनुवाद में रखे तात्पर्य समस्त लोगों के देवता विश्व रूप की भयानकता तथा प्रदीप्त तेज से इतने भयभीत थे कि विरक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। तो और शरण कोई और नहीं है भगवान ही है तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आप इंग्लिश में कहेंगे पैसिफाई हिंदी में क्या कहेंगे उसको मतलब शांत हो जाए हाँ शांत हो जाए और हमारी रक्षा कीजिए इस प्रकार से। 22वां रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या
रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या
विश्वेश्विनौ मरुत चोष्म पाश्च
विश्वेश्विनौ मरुत चोष्म पाश्च
गंधर्व यक्षा सुर सिद्ध संघा
गंधर्व यक्षा सुर सिद्ध संघा
वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे
वीक्षन्ते त्वां विस्मिता सर्वे।
तो कह रहे हैं रुद्र रुद्र बड़ा स्पष्ट है 11 रुद्र होते हैं आदित्य मतलब अदिति के पुत्र वसवो अर्थात वसुगण ये च साध्या मतलब सिद्धगण विश्वेश्विनौ विश्व देवता अश्विनी अश्विनौ मतलब अश्विनी कुमार अश्विनौ इसलिए बोला है क्योंकि दो अश्विनी कुमार हैं तो दो वचन का उपयोग कर रहे हैं मरुतश्च मरुतश्च मतलब मरुतगण। अब ये अच्छा शब्द है उष्म पाश्च उष्मा का अर्थ क्या होता है भाप प मतलब पीने वाले भाप को पीने वाले तो टीका में लिखा है इसे पितृगण कहते हैं तो पितृगण भाप पीते हैं ऐसा है। हर एक का खाना अलग अलग प्रकार से है जैसे यहाँ पे जल दिया जाता है तो उन्हें भोजन के रूप में प्राप्त होता है तो इसलिए यहाँ पे पितृगणों को बोला जा रहा है उष्म पा मतलब जो भाप पीने वाले हैं बस ये टीका करी गई है। गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संगा, गंधर्व यक्ष असुर और सिद्ध एक साथ विक्षन्ते, विक्षन्ते मतलब आपको देख रहे हैं। त्वाम विस्मिताश्चैव सर्वे, और विस्मित हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे स्पष्ट है ना कि जो भगवान का विश्व रूप है वह वहां पे उपस्थित देवताओं ने, यक्षों ने, रुद्रों ने देखा था और वह युद्ध देखने के लिए आए थे, ये बात स्पष्ट हो गया। तो इसी श्लोक से समझना चाहिए। शिव के विविध रूप आदित्य गण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। गीता भूषण टीका। श्लोक का अर्थ स्पष्ट है, सब लोग देख रहे हैं। उष्मपाक अर्थ है पितृगण जो भाप पीते हैं। तो ये नई चीज हमने सीखी। श्रुति कहती है उष्म भागा ही पितरः, पितृगण भाप ग्रहण करते हैं। देखिए इसीलिए इसमें शुष्क लॉजिक का कोई स्थान नहीं है कि कोई कहे कि तुम्हारा टिफिन हम यहाँ लगा दें तो ट्रेन में मिल जाएगा क्या। कुछ लोग कहते हैं पितरों को तुम जल दे रहे हो, उन्हें कहाँ मिल रहा है, कैसे देख सकते हो, वो तो चले गए, कहाँ होंगे पता नहीं। लेकिन महाराज जी उदाहरण दे रहे थे कि देखिए यहाँ पे आप अगर बुक करते हैं अपना लंच, टिकट में हो रहता है ना, राजधानी इत्यादि में आप बुक कीजिए तो आपको वहां मिल जाता है। अब आप कौन से स्टेशन पे हैं वो जानते नहीं, लेकिन वहां के जो पेंट्री कार वाले वो जानते हैं और वो आपकी व्यवस्था कर देते हैं। तो जब इस जगत में लोग इस प्रकार की व्यवस्था कर सकते हैं तो देवताओं के द्वारा क्यों नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे जो जल अर्पित करते हैं श्राद्ध इत्यादि में तो वह पितरों को मिलता है। ठीक है, इसमें कोई खास टीका नहीं, प्रभुपाद ने तात्पर्य भी नहीं दिया, थोड़ी बहुत टीका है तो उसको नहीं लिया जाता। आगे देखिए, बोलिए मेरे पीछे। रूपम महते बहुवक्त्र नेत्रम,
रूपम महते बहुवक्त्र नेत्रम,
बाहु बहुबाहुरुपादम,
महाबाहु बहुबाहुरुपादम,
बहुदरम बहुदंष्ट्राकरालम,
बहुदरम बहुदंष्ट्राकरालम,
दृष्ट्वा लोकः प्रवृता प्रवृथितास्तथाहम्,
दृष्ट्वा लोकः प्रवयातितस्तथाहम्।
रूपम महत्ते, महत्ते, ते महत् रूपम, आपके महान रूप को जिसमें बहुवक्त्र नेत्रम, जिसमें बहुत सारे नेत्र हैं, बहुत सारे वक्त्र मतलब बहुत सारे मुख हैं, महाबाहु मतलब हे महाबाहु, उसमें बहुत सारे बहुबाहु रूपादम, बहुत सारे बाहु हैं और पाद हैं, मतलब उरु मतलब जांगे हैं और पाद मतलब पांव हैं, बहु उदरम मतलब बहुत सारे पेट हैं, बहु दंष्ट्रा करालम मतलब बहुत भयानक भयानक दांत हैं, दृष्ट्वा लोकः इसको देख करके लोक, प्रवित था मतलब बहुत व्यथित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तथा अहम और मैं भी हो रहा हूं। ठीक है, हे महाबाहु आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जांग, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी हूं। गीता भूषण टीका। तीनों लोग किस प्रकार भगवान के विश्व रूप को देखकर व्यथित हो रहे हैं, इसको इस श्लोक से उपसंहार कर रहे हैं। उपसंहार कर रहे हैं मतलब अब पूर्ण कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। यह रूप बहुत भयानक था और इसके बहुत सारे दांत थे। बाकी श्लोक स्पष्ट है। तथा हम अर्थात मैं भी शब्द अगले श्लोक से संबंधित है, मतलब मैं भी इसको देख करके घबरा रहा हूं। ठीक है, आपके पास अब दूसरी फाइल आई होगी, उसको जरा देखिएगा। 11.24 से 31 सबको मिल गया? आपके फोन नहीं है, आपके पास फोन नहीं है? ठीक, सबके पास है, शुरू करें। ओके, नभास्पृशं दीप्तमनेकवर्णम्, व्यत्ताननम् दीप्तविशालनेत्रम्,
व्यत्ताननम् दीप्तविशालनेत्रम्,
दृष्ट्वा हि त्वाम् प्रवृथितान्तरात्मा,
दृष्ट्वा हि त्वाम् प्रवृथितान्तरात्मा,
धृतिम् न विन्दामि शमम् च विष्णो,
धृतिम् न विन्दामि शमम् च
विष्णो। नभस्पृशम् मतलब नभम् मतलब क्या होता है, आकाश। स्पृशम् मतलब छूता हुआ, तो विश्वरूप जो है वह आकाश को छूता हुआ दिख रहा था। दीप्तम अनेक वर्णम, अनेक वर्णों के रोशनियां से बाहर आ रही हैं। व्यत्ताननम व्यत्ताननम का अर्थ हुआ आनंद का अर्थ होता है मुख, व्यत्ताननम मतलब मुख खुले हुए हैं बहुत। दीप्त विशाल नेत्रम, आपके नेत्र बड़े बड़े विशाल हैं और अग्नि के समान प्रज्वलित हैं। दृष्टा ही ताम त्वाम, आपको इस प्रकार से देख करके प्रवृत्तांतरात्मा, मेरा मन प्रकृष्ट रूपे न विदित, बहुत ज्यादा व्यतीत परेशान हो रहा है। धृतिम न विंदामी, धृतिम मतलब मैं धैर्य धारण नहीं कर पा रहा हूँ, विंदामी मतलब जान नहीं रहा हूँ, विंदामी का अर्थ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ किस प्रकार से मैं धैर्य धारण कर पाऊं। शमम च विष्णु, शमम का मतलब होता है मन का संयम करना, मैं अपने मन को संयमित नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, इजी है श्लोक, बहुत कठिन नहीं है, तो इसमें कोई खास अनुवाद सॉरी टीका की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक शब्द इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है शब्द, यह है शब्द है यहाँ पे विष्णु। विष्णु का अर्थ ही होता है सर्वम व्याप्ते, जो हर जगह व्यापित होता है उसको विष्णु कहते हैं। तो ये विष्णु शब्द इसलिए उपयोग में लेके आ रहे हैं क्योंकि विष्णु जो विश्व रूप है वह सर्वव्यापी है, इसलिए विष्णु कह रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी अनुवाद में लिख रहे हैं इसको, हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकालते देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। तो इसको हमने पढ़ लिया था अभी, गीता भूषण टीका। अर्जुन अब दो श्लोकों में अपने दैन्य को प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि भगवान अपने उस विश्व रूप का स्मरण कर लें। क्या ये दिख रहा है आपको कि अर्जुन दैन्य प्रस्तुत कर रहे हैं? दैन्य मतलब दीनता, मैं परेशान हो रहा हूं देख करके, आप कृपया इसको इस रूप को हटा लीजिए। मुझे याद है बचपन में मुझे हॉरर मूवी से बहुत डर लगता था और जबरदस्ती मुझे बिठाया दिया जाता था कि हॉरर मूवी चलेगी, देखो देखो, अरे थोड़ा सा देखो, नहीं 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 ऐसे, तो मैं बहुत डरता था। अब हाई स्कूल तो पता नहीं, लेकिन याद भी कब तक, लेकिन काफी समय तक डरता था मैं। तो उसी प्रकार से हम समझ सकते हैं कि अर्जुन जो है बहुत डर रहे हैं और कहते नहीं नहीं मुझे ये रूप अब नहीं देखना है। इस प्रकार से आपको देख कर मैं भयभीत और उद्विग्न मना, उद्विग्न मना समझते हैं मतलब मन बहुत विचलित हो गया, परेशान हो गया हो गया हूं और मैं संतुष्टि या शांति को प्राप्त नहीं हो पा रहा हूं। टीका बहुत स्पष्ट है, उसमें समझाना नहीं है। हे विष्णु, ये कैसा रूप है? ये आकाश को स्पर्श कर रहा है और संपूर्ण अंतरिक्ष पृथ्वी और स्वर्ग के मध्य के स्थान में व्यापक है। ये समझ में आई बात? स्वर्ग और पृथ्वी में जो भी स्थान है उसको भी उसने घेर लिया है और इसका विशाल मुख खुला हुआ है। देखिए, यहां तो हम पढ़ रहे हैं, एक बात भक्त बता रहे थे कि जैसे बकासुर था, अब बकासुर कोई छोटी मोटी बत्तख नहीं थी जो हमारे खेत में घूमता हुआ दिखाई पड़ती है। इतना बड़ा बकासुर था, उसको देख के हमारी हालत खराब हो जाएगी। अरे आप इसकी बात छोड़िए, छिपकली देख के डर जाते हैं हम लोग, तो विश्वरूप तो बहुत बड़ा हुआ ना, तो उसको देखकर अर्जुन जैसा महारथी अगर घबरा रहा है तो स्वाभाविक है कि वो बहुत भयानक होगा। अन्य शब्दों का अर्थ स्पष्ट है। यहाँ अर्जुन भगवान के काल रूप का दर्शन करके भयानक रस को प्रकट कर रहा है। भयानक मतलब उनको भयभीत हो रहा है, समझना नहीं इसमें। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, मेरे पीछे बोलिए। दंष्ट्रा करालानि च ते मुखानि,
दंष्ट्रा करालानि च ते मुखानि,
दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि,
दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि,
दिशो न जाने न लभे च शर्मा,
दिशो न जाने न लभे च शर्मा,
प्रसीद देवेश जगन्निवास,
प्रसीद देवेश जगन्निवास।
दंष्ट्रा करालानि, आपके बहुत ही भयानक भयानक दांतों को देख करके, चते मुखानि, और आपके भयानक मुख को देख करके, दृष्ट्वैव मैं देख रहा हूँ, काला अनल सन्निभानि, जो प्रलय कालीन अनल के समान है, उस प्रकार से दिशु न जाने, मैं दिशा नहीं समझ रहा हूँ कि दिशा कहाँ है। क्या कभी आप लोगों से ऐसा हुआ है कि आपको समझ में ना आया हो कि कौन सी दिशा में जाना है, उत्तर दिशा कहाँ है? ऐसा कभी नहीं हुआ है, लेकिन एक हम लोग अंदाज लगा सकते हैं कुछ समुद्र में हो, एकदम बीच समुद्र में, और कोई तट ना दिखाई पड़ रहा हो, तो उस प्रकार की स्थिति हो सकती है जो समझ में ना आए कि उत्तर कहाँ दक्षिण कहाँ, लोग भ्रमित हो जाते हैं। मति भ्रम के कारण कभी कभी हो सकता है, लेकिन ऐसा अनुभव हमको है नहीं। लेकिन ये है जैसे कभी चक्कर आ रहा हो सकता है कि हम समझ ना पाए कि दिशा किस दिशा में जाना है। घबरा जाता है व्यक्ति, तो ये घबराहट के कारण समझ नहीं पा रहे कौन सी दिशा किधर को है। न लभे च शर्मा, शर्मा का अर्थ क्या होता है? अब शर्म का अर्थ लाज लज्जा ही नहीं होता है हमेशा, तो यहाँ पे शर्म का अर्थ आपने पढ़ लिया लगता है ठीक है, तो मुझे सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, हर जगह एक ही अर्थ नहीं होता। एक बार आपको याद होगा, मुझे याद है छठे स्कंद में जहां तक मुझे स्मरण आना, अजामिल के प्रसंग में आता है घृणा शब्द, घृणा शब्द वहां पे कृपा के लिए आया। तो मुझको समझ में नहीं, घृणा शब्द कृपा के लिए कैसे आया है? लेकिन घृणा का शब्द, घृणा का अर्थ घृणा भी होता है, और किसी के संदर्भ में घृणा का अर्थ कृपा या कृपा भी होता है, इस प्रकार से प्रेम भी होता है, तो अलग अलग अर्थ होता है। तो यहाँ शर्म का अर्थ है कि मुझे शर्म नहीं आ रही है, ऐसा है नहीं। लभे च शर्मा मतलब मुझे सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। आपको याद होना चाहिए कि अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए गए थे, दिव्य मन नहीं दिया गया था। उसका अर्थ ये था कि वह भगवान कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करने वाले भक्त थे, उनका ऐसा मन था, और देख रहे हैं विश्वरूप को लेकिन उसे कोई सुख प्राप्त नहीं हो रहा, तो केवल इसीलिए देख रहे हैं ताकि सब लोग, अन्य लोग समझ जाएं कृष्ण भगवान है। प्रसीद देवेश, हे देवेश अर्थात देवताओं को भी नियामन करने वाले, मुझसे आप प्रसन्न हो जाइए। जगन निवास, आप ही जगत के आश्रय हैं, पूरा जगत आप में ही निवास प्राप्त करता है। ठीक है, शब्दों का अर्थ, हे देवेश, हे जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो, मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा, मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूं। मिनट, कहां थे? गीता भूषण टीका, आपके भयानक दांत और मुख देखकर जो प्रलय कालीन अग्नि के समान है, क्या था? काला नल सन्निभानी, मेरी दिशाओं का ज्ञान शून्य हो रहा है और मैं शर्म अर्थात सुख को प्राप्त नहीं हो पा रहा हूं। बहुत स्पष्ट टीका है, इसमें कुछ समझाना नहीं है, हम अपने शुद्धिकरण के लिए पढ़ रहे हैं। अब वह भगवान के काल रूप को देख रहे हैं, तो आप लोग भी देखिए मेरे पीछे बोलिए, अमी च त्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्रा,
अमी च त्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्रः,
सर्वे सहेवानलिपा सर्वे सहेवा वनिपाल संघै,
सर्वे सहेवा वनिपाल संघै,
भीष्मो द्रोणः सूत पुत्रस्तथासौ,
भीष्मो द्रोणः सूत पुत्रस्तथासौ,
सहास्मदीयैरपि योद मुख्यै,
सहास्मदीयैरपि योद मुख्यै।
अब ये जो बात वो बोल रहे हैं, ये आगे होने वाली है। क्या बात बोल रहे हैं? अमी चत्वाम, ये सब धृतराष्ट्रस्य पुत्रः, धृतराष्ट्र के सारे पुत्र, सर्वे सहे वा वनिपाल संगे। वनिपाल का अर्थ प्रभुपाद क्या ले रहे हैं? अवनिपाल, वीर राजाओं के साथ। ठीक है, तो प्रभुपाद इस प्रकार से कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्र और उनके साथ में जितने भी राजा थे, वह पूरा समूह, भीष्म द्रोण सूत पुत्रस तथा असौ, भीष्मदेव द्रोणाचार्य सूत पुत्र अर्थात कर्ण, और असौ, असौ मतलब ये अन्य लोग भी अर्थात मेरे सेना के समूह के लोग भी, सहास्मदीय रपिमयोद मुख्य, जो मुख्य अन्य योद्धा हैं, अस्मदीय मतलब हमारे भी सारे के सारे लोग आप में प्रवेश करते हुए दिख रहे हैं, प्रवेश करते हुए दिख रहे हैं, आगे देखेंगे। वक्त्राणी ते त्वरमाणा विशन्ति, वक्त्राणी मतलब आपके मुखों में ये त्वरम, त्वरम का अर्थ होता है जल्दी, मेरे ख्याल से इसका अर्थ यही है, कहाँ लिखा हुआ है, हाँ त्वरमाणा, त्वरित शब्द सुना है आपने, हाँ त्वरित, तो बहुत, मैं देख रहा हूं कि आपके मुख में बड़ी तेजी से विशन्ति प्रवेश कर रहे हैं। दंष्ट्रा करालानी भयानकानी, अब तो दंष्ट्रा कराल का अर्थ समझ गए होंगे, दंष्ट्रा कराल मतलब आपके बड़े भयानक भयानक दांतों में, केचित वेलगना दशनांतरेषु संदृश्यन्ते चूर्ण तैरुत मांगे, उसमें वो पीसे जा रहे हैं, एकदम दांत से भगवान पीस रहे हैं, इस प्रकार से वो देख रहे हैं, लेकिन अपने को नहीं देख रहे हैं। ये बात अभी भगवान आगे पुष्ट करने वाले हैं कि हाँ मैं सबको खा जाऊंगा, तुमको और कुछ लोगों को छोड़कर, पांडवों को छोड़कर। ठीक, इसलिए जब वो घटना होती है ना, जब अश्वत्थामा कृपाचार्य और एक और था ना, क्या नाम था उसका, कृतवर्मा, तीनों ने जब पांडवों के सेना का एक एक अक्षौहिणी सेना बच गई थी तो उसको तीनों ने अकेले ही नाश कर दिया था। तो समझना चाहिए वो कैसे नाश हुआ, भगवान के, हाँ भगवान के ही वह एक निमित्त मात्र बने थे। जैसे अर्जुन को निमित्त बना करके अन्य शत्रु पक्ष का विध्वंस कराया, ऐसे ही उनको निमित्त बना करके पांडवों की सेना को ध्वंस करा दिया। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। अब मैं अगर ये कहूं कि ये काल स्वरूप है भगवान का, तो आप मानेंगे? ये दिख रहा है आपको? क्यों, सब लोग खा रहे हैं, सबको खा रहे हैं इसलिए? नहीं, ये सबको मार रहे हैं? नहीं, काल के प्रभाव सब लोग भगवान में प्रवेश कर रहे हैं? नहीं, ये घटना भविष्य की है, ये अभी नहीं हो रही है, ये भविष्य वाली घटना भगवान दिखा रहे हैं कि सारे मारे जाएंगे। काल के रूप में तो मार ही रहे हैं, वो बात सत्य है, लेकिन भविष्य की बात दिखा रहे हैं। समझ में आ रहा है? यस। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूं। कभी देखा है आपने किसी के देखना भी यही चाहते, लेकिन बड़ा भयानक हो गया ना किसी को। एक बार मैंने देखा था बिल्ली एक चूहे को खा रही थी, वही देख के बिल्कुल, हाँ अपने डिवोटी किचन के सामने ही सही, उसने महाप्रसादी गोविंद बोला और चालू लेकिन बड़ा डरावना, उसे खा भी नहीं रही थी, खाली मुंह पकड़ी हुई थी लेके भाग रही थी। तो इस प्रकार से बड़ा भयानक लगता है। गीता भूषण टीका, भगवान ने पहले कहा था जो कुछ भी तुम देखना चाहते हो, तो ऐसा कहने से भगवान का आशय यह था कि मेरे शरीर में इस युद्ध में भविष्य में होने वाली हार और जीत को देखो। आपको बताया था मैंने बात कि ये बात याद रखना, भगवान कह रहे हैं कि तुम पूरे जगत को देखो और तुम जो कुछ भी देखना चाहते हो वह भी देखो। तो अर्जुन क्या देखना चाहते थे, कि मैं जीतूंगा कि हारूंगा, तो वह भी भगवान ने अभी दिखा दिया। अब इन, अच्छा एक और बात है कि अर्जुन ने नहीं बोला था कि आप मुझे दिखाइए कि मैं जीतूंगा या हारूंगा, उनकी इच्छा थी जिसको भगवान जान रहे हैं, तो उसको भगवान पूरा कर रहे हैं। अब इन 5 श्लोकों में भगवान इसको प्रदर्शित कर रहे हैं, किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, किस प्रकार से ये लोग जीते, पांडव जीतेंगे और कुरुप वंश हार जाएगा। एक बात इससे वहां से सीखने वाली है कि देखिए, जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाया था और उनका एक उद्देश्य था, उसी प्रकार से वही भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं और उनका भी एक उद्देश्य है, एक मिशन है। पृथ्वी ते आछे यदन यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। तो जिस प्रकार से अर्जुन युद्ध ना करते तो भी ये लोग मारे जाते, ये भगवान दिखा रहे हैं। उस प्रकार से हम भी प्रचार करें या ना करें, प्रचार तो होगा लेकिन क्रेडिट किसी और को मिल जाएगा, ये सोचने वाली बात। अब अलग बात है और अद्भुत बात है, जिन लोगों को जो मारा जाना था उनको पहले ही मारा जा चुका है, उसी प्रकार से जिन लोगों को प्रचार रित होना है उनको पहले से सेलेक्ट कर लिया, इन इन लोगों को प्रचार किया जाएगा, ये लोग भक्त बनेंगे, ये लोग भगवान के धाम जाएंगे। हमें केवल हाथ रखना है, हमें अपना केवल प्रयास करना, सब फिक्स हो गया, कौन किसके द्वारा प्रचारित है ये भी फिक्स हो गया। लेकिन अगर हम सो जाएंगे तो हम सो सकते हैं। ये मत सोचिए कि महाप्रभु की लीला समाप्त हो गई है, संकीर्तन आंदोलन जब तक चल रहा है, महाप्रभु की लीला चल रही है, लोगों का उद्धार हो रहा है और लोग जाएंगे। प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट लिखते हैं, जिसने भी हरे कृष्ण मंत्र जप किया है उसने महाप्रभु की कृपा को प्राप्त किया है। अब उसको विस्तार करते जाना, उसको अलग अलग माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन सब लोगों को किसी न किसी रूप से निमित्त बनना चाहिए इसका। 5 श्लोकों में भगवान क्या प्रदर्शित करेंगे, काल स्वरूप। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र यथा दुर्योधन और अन्य वह वहां एकत्रित राजागण जैसे शल्य, जयद्रथ, सूत पुत्र कर्ण आदि बड़ी तीव्रता से आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, तो वह स्पष्ट है। साथ ही वे जो अजय के रूप में प्रख्यात हैं जैसे भीष्म आदि, वह भी आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि भीष्म, द्रोण इत्यादि के संग ये उनको वरदान था कि जब तक उनके हाथ में धनुष है, अस्त्र है, उन्हें कोई हरा नहीं सकता, ना कभी हारे वो, ना द्रोणाचार्य कभी किसी से हारे थे, ना भीष्मदेव कभी किसी से हारे थे। महाभारत के युद्ध में भी भीष्मदेव कभी हारे नहीं किसी से, द्रोणाचार्य को कोई हरा नहीं पाया, ये समझ लेना चाहिए। वो मारे जरूर गए लेकिन हारे नहीं किसी से, ये उनको वरदान प्राप्त था। आपको पता होगा द्रोणाचार्य के पास गए थे, पूछे गुरुदेव आपको कैसे मार सकते हैं ऐसे भीष्मदेव को पूछा, आप तो मरेंगे नहीं, आप मरेंगे नहीं तो हम तो जीतेंगे नहीं, तो बताइए कैसे मर सकते हैं आप। तो बड़े उतने उदार थे कि उन्होंने बताया कि कोई स्त्री मेरे सामने आएगी तो मैं फिर युद्ध नहीं करूंगा। तो इस प्रकार से भीष्मदेव को शिखंडी को सामने रख करके उनसे युद्ध किया गया। और द्रोणाचार्य को क्या बताया गया था, अगर मैं सुन लूंगा कि मेरा बेटा मर गया है तो मैं दुखी हो जाऊंगा और अस्त्र त्याग दूंगा, नहीं तो अस्त्र जब तक हाथ में है मुझे कोई हरा नहीं सकता। भगवान बड़े चतुर हैं। जब जयद्रथ को मारना था तो द्रोणाचार्य आगे सामने लड़ने के लिए, तो भगवान बहुत बुद्धि दिए, कहे अरे इनको तुम कभी नहीं हरा पाओगे, छोड़ो इनको। तो अर्जुन उनको एकदम बाईपास, उनको नेग्लेक्ट करके चला गया, जबकि द्रोणाचार्य जी बोल रहे तुम कैसे क्षत्रिय हो, तुमको मैं ललकार रहा हूं, तुम युद्ध करो। भगवान देखे ही नहीं उसको, अर्जुन को लेके चले गए साइड से। भगवान बहुत ना सिर्फ शक्ति से अपनी बुद्धि से भी भगवान बहुत गाइडेंस दे रहे थे। क्या सुनाई दे रहा है आप लोगों को? कुछ नहीं दे रहा, माइक नहीं यूज करेंगे तो किसी को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा।
यहाँ पे जो लोग युद्ध कर रहे हैं वो तो भगवान के धाम जा रहे हैं ना, तो वो भगवान के मुख में जा रहे हैं, इनको किस
ठीक है ये एक अच्छा प्रश्न है कि भाई यहाँ पे तो हमने भी सुना है कि जो लोग वहां पे मरे भगवान के धाम जा रहे हैं, तो यहाँ देख रहे हैं कि भगवान के मुख में जा रहे हैं। अब जैसा प्रश्न है वैसे उत्तर दे देता हूँ, भगवान मुख में खा रहे हैं और भगवान के अपने धाम भेज दे रहे हैं। अब क्या बोलूं बताइए, अर्जुन जो देख रहे हैं कुछ गलत तो नहीं देख रहे हैं, बेसिकली उनको मार रहे हैं, उनके शरीरों को मार रहे हैं लेकिन आत्मा को भगवान के धाम भेज रहे हैं। ठीक है, असौ शब्द को सूत पुत्रों के साथ प्रयोग करने से यह इंगित हो रहा है कि कर्ण सदा ही अर्जुन के प्रति द्वेष से युक्त थे। न तो ना सिर्फ कर्ण अपितु हमारे पक्ष के योद्धा जैसे दृष्टद्युम्न आदि भी आपके मुख में प्रवेश कर रहे। छोटा सा क्विज क्वेश्चन, दृष्टद्युम्न को किसने मारा था? अश्वत्थामा ने अकेले ही मारा था, अकेले मारा था। और किस अस्त्र से मारा था? हाथ से मारा था। तो क्यों मारा था? हाँ, अगर तलवार से मारता तो स्वर्ग प्राप्त हो जाती। बड़ा क्रोध था कि उसने मेरे पिता को तुमने जो है धोखे से मारा था। उनमें से कुछ उस विश्वरूप के दांतों के बीच फंसे हुए दिख रहे हैं जिनके, और उनके सिर पीसे जा रहे हैं। तात्पर्य, एक पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को वचन दिया था कि यदि वह कुछ देखने के इच्छुक हो तो वे उसे दिखा सकते हैं। देखिए एकदम स्पष्ट पुलगुल कमेंट्री से ही प्रभुपाद जी देखे हैं। अब अर्जुन देख रहा है कि विपक्ष के नेता भीष्म, द्रोण, कर्ण तथा धृतराष्ट्र के सारे पुत्र तथा उनके सैनिक और अर्जुन के भी सैनिक विनष्ट हो रहे हैं। आप लोगों को शायद लग रहा कुछ व्याख्या ही नहीं हो रही है, ऐसे क्या व्याख्या करूंगा मैं, कोई व्याख्या की आवश्यकता है नहीं, चलने दीजिए। व्याख्या वाले श्लोक आने वाले हैं अराउंड 33, 34, 35 के अराउंड। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं इसको सभी। यह इसका संकेत है कि कुरुक्षेत्र में एकत्र समस्त व्यक्तियों की मृत्यु के बाद अर्जुन विजयी होगा। यहां यह भी उल्लेख है कि भीष्म भी, जिन्हें अजय माना जाता है, ध्वस्त हो जाएंगे। वही गति कर्ण की होनी है, न केवल विपक्ष के भीष्म जैसे महान योद्धा विनष्ट हो जाएंगे अपितु अर्जुन के पक्ष वाले कुछ महान योद्धा भी नष्ट होंगे। एकदम प्रपद ने वही बात बोली है। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। 28 और 29 श्लोक बड़ा ध्यानपूर्वक देखिए, मेरे पीछे बोलिए, किसके पास माइक है, जो भी बोलना चाहते हैं। पीताम्बर प्रभु माइक लीजिए, या जो भी बोलिए। हाँ, यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगा,
नदीनां बहवो अम्बुवेगा,
समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति,
समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति,
तथा तवामि नरलोकवीरा,
तथा तवामि नरलोकवीरा,
विशन्ति वक्त ज्वलती,
विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलती।
यथा नदी नाम बहवो अम्बु वेगा, जिस प्रकार से बहुत सारी नदियां बहवो अम्बु वेगा, बहवो अम्बु मतलब बहुत सारे जल के संयुक्त होकर बड़े वेग से समुद्र में वा अभिमुखा द्रवंती, समुद्र की ओर अभिमुख होकर के भागती हैं, दौड़ती हैं, गिरती हैं। तथा तवामी, तथा तव अमी, उसी प्रकार से आप में अमी मतलब ये सारे नरलोक वीरा विशंति, उसी प्रकार से सारे जो वीर हैं इंसानों में, वह आप में प्रवेश करते हैं। कैसे आपके मुख हैं, तो कह रहे हैं वक्त्राणि अभिविज्वलंती, आपके वक्त्राणि मतलब आपके मुख जो हैं वह ज्वल्यमान है, उससे अग्नि प्रकट हो रही है। इसमें कोई स्पेशल नहीं लगा होगा, लेकिन टीका पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। तो अब ये देखिए उदाहरण क्यों दिया गया, जिस प्रकार से नदी में बहुत जल होता है कि नहीं, और बहुत जल समुद्र में प्रवेश कर रहा है, और बहुत सारी नदियां प्रवेश कर रही होती हैं, उसी प्रकार से बहुत मात्रा में योद्धा भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे, इसलिए उदाहरण दे रहा। समझ में आया? अगले उदाहरण में वो क्या कहेंगे, जिस प्रकार से पतंगे अग्नि में प्रवेश कर रहे हैं, तो वहां पे भी टीका, पहले टीका पढ़ता हूं तो समझ में आएगा। गीता भूषण टीका, यहां दो उदाहरण दिए जा रहे हैं यह समझाने के लिए, यहां मतलब अगले श्लोक को देखेंगे अभी, यह समझाने के लिए कि किस प्रकार वे सब विश्व रूप के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। पहले उदाहरण में वे अनिच्छा पूर्वक, बिना अनिच्छा पूर्वक यानी बिना इच्छा के विश्व रूप को, बिना विश्व रूप को समझे प्रवेश कर रहे हैं, और दूसरे उदाहरण में वे जानबूझकर उसमें प्रवेश कर रहे थे। और वे उदाहरण देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा,
यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा,
नश्यन्ति नाशाय समृद्ध वेगा,
नश्यन्ति नाशाय समृद्ध वेगा,
तथैव नाशाय विशन्ति लोका,
तथैव नाशाय विशन्ति लोका,
तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा,
तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा।
समझ में आया? यथा प्रदीप्तम, जिस प्रकार से, यथा प्रदीप्तम ज्वल पतंगा, जिस प्रकार से प्रदीप्त अग्नि में पतंगे प्रवेश करते हैं, यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा, अपना अपने नाश के लिए समृद्ध वेगा, बड़े बड़े वेग से जाते हैं, किसके लिए, खुद के नाश के लिए, तथैव नाशाय विशन्ति लोका, अपने ही नाश के लिए सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और आप में प्रवेश कर रहे हैं, तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा, उसी प्रकार से आपके वक्त्रा मतलब आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तब दोनों उदाहरणों को समझिए, नदियां नहीं समझ रही कि समुद्र में प्रवेश कर रही हैं, और बड़ी ही बड़ी मात्रा में जल लेकर के वह समुद्र में प्रवेश कर रही हैं, समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से ये जो बहुत सारे योद्धा हैं, बड़ी बड़ी मात्रा में, कितना 18 क्षौणियां, वो देख रहे हैं कि 18 क्षौणी का मतलब कुछ लोग कहते हैं 64 करोड़, अब जो भी होता हो नंबर, गणित मुझे नहीं पता उसकी, लेकिन इतने करोड़ हमने सुना, इतने करोड़ लोग आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, चबाए जा रहे हैं, पीसे जा रहे हैं। तो यहाँ पे इसलिए बोल रहे हैं कि उनमें कोई कंट्रोल नहीं है, मारे जा रहे हैं काल रूप में। और यहाँ इस वाले श्लोक में बोल रहे हैं प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा, जैसे पतंग अग्नि को देख के आकर्षित होते हैं और अपने अपना ही नाश के लिए उसमें प्रवेश कर जाते हैं, उसी प्रकार से ये सब लोग जानबूझ के इकट्ठे हुए हैं युद्ध करने की लालसा से, और ये सब मरेंगे, इसलिए दो उदाहरण दे रहे हैं। समझ में आ रहा उदाहरण नहीं? हाँ, ये जान करके जा रहे हैं। देखिए, अनजाने का मतलब है कि ये लोग ना चाहते हुए भी अपने प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बच के जाने वाले हैं ये लोग, ये कोई जान के प्रवेश कर रहे हैं का मतलब यह है कि ये लोग जानते हैं कि ये युद्ध हो रहा है, जानबूझ करके आए हैं युद्ध करने के लिए, ये अर्थ। और सबको मृत्यु होनी, और विश्वरूप किसी को छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए विश्वरूप को जान नहीं रहे, जान नहीं रहे कि कृष्ण ही विश्वरूप में जो सबको लेकर इसाद ला करके मारेंगे। कुछ लोग नहीं, सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। तो जिस प्रकार से बड़ी मात्रा में नदी जाती है समुद्र में, उसी प्रकार से सब प्रवेश कर रहे हैं, वो जान नहीं रहे हैं कि ये विश्वरूप है, भगवान विश्वरूप है, भगवान ही सबको व्यवस्था कर रहे हैं युद्ध की, सबको मारने के लिए इकट्ठा किया, ना वो समझ नहीं पा रहे। हाँ, भीष्म देख रहे थे, फिर क्यों ही भागे वहां से भाग लेना चाहिए था वहां से, क्षत्रिय लोग ऐसे नहीं जाते। अरे आप भी तो अभी युद्ध में जाने वाले थे ना है कि नहीं? मैंने सुना था आपकी इच्छा थी वहां जाए, लद्दाख में जाके गोली चलाएं, ऐसा नहीं नहीं था? अच्छा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, सुना मैंने इस प्रकार। लेकिन कभी कभी लोग जानबूझ करके युद्ध के लिए जाते हैं, क्षत्रियों का स्वभाव उस प्रकार से। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूं, जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। कोई टीका नहीं है, टीका में बस इतना लिखा है ज्वलन ज्वलनम का अर्थ है अग्नि। आज हम पूर्ण करने का प्रयास करेंगे, दो श्लोक और देखेंगे। बहुत बड़ी टीका थी ना ज्यादा खुश मत हो, अभी आने वाली कमेंट्रीज वो थोड़ी कठिन है, अभी अब थोड़े थोड़े शुरुआत अभी तक तो आसान ही है। लेली हसे ग्रस मानह समंता,
लेली हसे ग्रस मानह समंता,
लोकान समग्रान वद नैर ज्वलत भी,
लोकान समग्रान वद नैर ज्वलत,
तेजो भीरा पूर्य जगत समग्रम,
तेजो भीरा पूर्य जगत समग्रम,
भासस्तवो ग्रा प्रतपन्ते विष्णु,
भासस्तवे ग्रा विष्णु।
लेली हसे मतलब अपनी जीभ से आप चाट रहे हैं, ग्रसमाना मतलब निगलते हुए, समंता समस्त दिशाओं में, लोकान समग्रान वदनैर ज्वलत भी, आपके मुखों से सभी दिशाओं में अग्नि, हाँ अग्नि सभी दिशाएं जल रही हैं आपके मुखों से निकलने वाली अग्नि से, तेजो भीरा पूर्य जगत समग्रम, पूरा जगत पूरा समग्र जगत आपके तेज से व्याप्त है, भासस्तव उग्रा प्रतपंत विष्णु, आपकी जो कांति है उग्र कांति है वह जगत को जला रही है, हे विष्णु हे सर्वव्यापी भगवान, हे विष्णु मैं देखता हूं कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगल रहे हैं, आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। गीताभूषण टीका यह वर्णन करके कि किस प्रकार योद्धागण विश्व रूप के मुख में प्रवेश कर रहे हैं, अर्जुन अब उस रूप से निकलने वाली ज्योति का वर्णन कर रहे हैं और यह वर्णित करते हैं कि किस प्रकार यह सर्वत्र व्याप्त हो रही है। हम लोग को समझाना नहीं है, आप अपने जज्वल्यमान मुखों से सभी दिशाओं से उन सभी को लील रहे हैं जो बड़े वेग से आप में प्रवेश कर रहे हैं और बारम्बार आप अपने रक्त रंजित होठों को क्रोध में चाट रहे हैं। भगवान का बड़ा भयानक वर्णन आ रहा है, ठीक है। आपसे निकलने वाली दीप्ति पूरे ब्रह्मांड को भर रही है और असह तेज से पूरित कर रही है, हे विष्णु आप संपूर्ण विश्व में व्याप्त हैं, आपसे पलायन कर पाना संभव नहीं है। बहुत अच्छी बात, इस बात पे हमारे दीन बंधु कहते हैं हम कोई पाप करते हैं हम सोचते हैं कोई नहीं देख रहा है, लेकिन हृदय में अंदर कैमरा मैन फोटो खींच लेता, टिक टिक फोटो खींच ली, रिकॉर्डिंग हमेशा होती रहती है, तो कहे कि भगवान से मैं बच जाऊंगा या वह नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। एक भक्त ने प्रश्न किया, प्रभु जी जब भगवान हृदय में हैं और सब देख ही रहे हैं तो अन्य 14 लोगों को क्यों लगा रखा है? अब जानते हैं 14 विटनेस होते हैं हम कोई भी कार्य करते हैं, भगवान हृदय में है तो 14 विटनेस लगाने की क्या जरूरत है? मैंने कहा क्या बोल सकते, भगवान की व्यवस्था है, भगवान चाहे देवता लोग भी काम करें कुछ, या कोई कहे कि अरे नहीं परमात्मा गलत बोल रहा है तो भगवान कहने देखो 14 गवाह और भी हैं शरीर की वजह से, जो भी कारण हो ऐसे ऐसे प्रश्नों का कोई उत्तर देने का कोई क्या कहा जाए, ऐसे उत्तर क्या बोलेंगे क्या उत्तर देंगे बताइए। लेकिन भगवान विष्णु के रूप में, लेकिन एक और बात महत्वपूर्ण है कि आप अगर भगवान की सेवा कर रहे हो तो भगवान और आपके बीच में कोई इन्फॉर्मेशन गैप नहीं है, किस उद्देश्य से किस भाव से हम सेवा कर रहे हैं भगवान को पता रहता है, ठीक है। आखिरी श्लोक आप लोगों की प्रसन्नता के लिए, आख्या हि मे को भवान उग्र रूपो,
आख्या हि मे को भवान उग्र रूपो,
नमस्तुते देव वर प्रसीद,
नमस्तुते देव वर प्रसीद,
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम,
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम,
नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम,
नहि प्रजामामि
तम, आख्या ही में हे भगवान आप मुझे आख्या, आख्या मतलब बताइए, आख्या शब्द वैसे संस्कृत में तो है ही, आख्या शब्द भारत की सरकार में भी चलता है, ये जो लोग पटवारी लोग रिपोर्ट लिखते हैं उसमें उसको आख्या कहते हैं, हम लोग आख्या लिखेंगे, आख्या मतलब रिपोर्ट होता है, आप मुझे बताइए विवरण दीजिए, आख्या ही में को भगवान उग्र रूप, आपका उग्र रूप क्या है? नमस्तुते देववर प्रसिद्ध, आपको नमस्कार हो, देववर मतलब देवताओं में सर्वश्रेष्ठ, प्रसिद्ध अर्थात आप मुझसे प्रसन्न होइए, विज्ञातुमिच्छामि मैं जानना चाहता हूँ, भवंत माध्यम आपके बारे में, आद्यम मतलब आदि आदि है, नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम मैं नहीं जान पा रहा हूँ, प्रजानामि मतलब जानामि मतलब जानना, प्रजानामि मतलब मैं ठीक से नहीं जान पा रहा हूँ, अच्छी प्रकार से नहीं जान पा रहा हूँ कि आपकी प्रवृत्ति क्या है, आप क्यों ये सब कर रहे हैं, क्यों लोगों को खा रहे हैं, क्यों इस प्रकार से खून पी रहे हैं, क्या कारण है, ये नहीं समझ पा रहा हूं, तो इसका उत्तर भगवान 32 श्लोक से शुरू करेंगे। जानते हैं आप कालोस्मी लोकोश इत्यादि। हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। प्रयोजन मतलब ये सब क्यों आप रूप प्रस्तुत किए हैं, क्यों लोगों को मार रहे हैं। गीता भूषण टीका। इस प्रकार काल शक्ति से युक्त भगवान के विश्व रूप का वर्णन करके यद्यपि अर्जुन तत्व को जानते थे, फिर भी संबंध में अपने ज्ञान को दृढ़ करने के लिए इस रूप के विषय में जिज्ञासा करते हैं। आपको बताया था मैंने सुबह की क्लास में भी कि साधु का स्वभाव होता है कि वो विषय को जानता है फिर भी वह पूछता है। तो यहाँ पे भी एक तो ये भी कारण है कि वह भयभीत हैं और जानते हैं कि भगवान काल रूप हैं, लेकिन फिर भी इसलिए प्रश्न कर रहे हैं ताकि दृढ़ता के लिए कि समझ भगवान स्वयं ही अपने मुख से बोले कि क्यों इस काल रूप में वे अपने को प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, अर्जुन ने श्लोक 4 में भगवान से प्रार्थना की थी कि दर्शयात्मानम अव्ययम, अर्थात कृपया आप अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए जो सहस्त्र शीर्ष आदि लक्षणों से युक्त हो, मतलब सहस्त्र मुखों वाले लक्षणों से युक्त हो। तो इस प्रकार प्रार्थित होकर, मतलब बीइंग रिक्वेस्टेड, भगवान ने उस रूप को, रूप नहीं होना चाहिए, रूप को दिखाकर पुनः उसके अति घोर संहारक रूप को भी प्रदर्शित किया। मतलब विश्व रूप को तो दिखाया ही, साथ ही काल स्वरूप को भी दिखाया। फिर से एक छोटी सी क्विज, विश्व रूप के 4 कौन कौन से भाग थे जिसको भगवान ने दिखाया? सर्व देवाकार रूप, सहस्र शीर्ष रूप, काल रूप और सर देता तो हो गया ना, सर्व देवाकार रूप, सहस्त्र शीर्ष रूप और काल रूप और चौथा मुझे भी याद नहीं आ रहा, भूल गया, जो भी है। आप कृपया मुझे बतलाइए कि यह उग्र रूप वाले आप कौन हैं। हे देववर, मैं आपको प्रणाम करता हूं, कृपया करके आप इस उग्र रूप को त्याग दीजिए। तभी आपने कुछ समय पहले पढ़ा था कि दीनता प्रयत्न करते हुए वो चाहते हैं कि भगवान उस रूप को समर्पित कर लें। मैं आप आदि भगवान को विशेष रूप से जानना चाहता हूं, आपकी प्रवृत्ति अर्थात चेष्टा को मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अब अपनी चेष्टा का प्रयोजन बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न है किसी का तो मुझे बताइए। ठीक है, तो यहां रुकते हैं, कल हम भगवान ने चाहा तो कल हम लोग भगवान के उत्तर को सीखेंगे। श्रीमद् भगवद्गीता की जय।